बड़ी दिलचस्प किताब है। मैं समझता हूँ कि इब्ने इंशा इसमें मुकम्मल सामने आते हैं, और यानी 200-250 सफात की इस किताब में कोई ऐसा घोषणा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं हम कह सकते हैं जिनको जिनपे मुख्तार रमन ने या फिर साहब कजलबाश ने जो खाके लिखे इब्ने इंशा पे, वो उसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐसी हैं जो बिल्कुल एक अलहदा अंदाज में जाहिर है, चूंकि ए हमीद साहब ने उस जमाने को याद किया है इस किताब में जो लाहौर का जमाना था, और लाहौर का जमाना था और बड़ा जानदार था। तो बाकी तो हम सब जानते हैं कि ना चाहते हुए भी इब्ने इंशा कराची चले आए थे, रोजगार के मसाइल थे दरपेश, फिर यही उन्होंने कदम जमा लिए, फिर यही से वो सारी दुनिया के सफर पे जाया करते थे, और इंतकाल भी यही हुआ, तदफीन भी यही हुई। कब्र पे भी मैंने जाके देखा उनकी, जिसपे आपको तख्ती भी बाकी नहीं रही है, पापोश नगर कराची के इलाके में एक गोशा है। लेकिन जनाब इब्ने इंशा पे जो पर जो किताब है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इब्ने इंशा साहब से अपनी दोस्ती और दिलचस्प वाकयात का कुछ इस अंदाज में जिक्र किया है कि वो एक गोया के लाजवाल उसको हैसियत एक बख्श दी है। मैं समझता हूँ कि ये किताब हमेशा जिंदा रहेगी, कुछ पढ़ने वालों की तरफ से और कारीन से अभी भी हमारे अहबाब इसका तकाजा करते हैं और ये ढूंढते फिरते हैं, तो दोबारा इसका कोई एडिशन सामने नहीं आया।
इस किताब में भी तस्करा है गमे रोजगार का, कि जो हमारे यहाँ अदीबों को अमूमन दरपेश होता है, और ये हमीद साहब को और इब्ने इंशा साहब को भी दरपेश था, तो इस सिलसिले में उन्हें किस कदर मुश्किलात पेश आई। और
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी तल्ख बात है ये, इस बात का जिक्र मैंने अपनी किताब में जो उनके मज़ामीन दो लिखे हैं उसमें किया है कि ये जो जुमला है, ये फितरा उनकी बेगम से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उनकी उंगलियां लिखते लिखते टेढ़ी हो गई, और ये हकीकत है। मैं जब उनसे मुलाकात के लिए गया था 2007 में, तो मैंने देखा कि वो उनके कमरे में हम बैठे, उनसे ढेर सारी बातें की, सिर्फ और सिर्फ लिखी पुरानी बातें, अमृतसर की बातें, लाहौर की बातें, डरबे उनके नॉवल के किरदारों पे बातें। देखिए बात यह है कि अब तो कुछ तल्ख बातें भी होनी चाहिए। हमीद अख्तर साहब ने तो लिख ही दिया था कि लाहौर की तपती गर्मी में, क़यामत खेज गर्मी में वो अपने कमरे में पड़े रहते थे और एसी के होते हुए एयर कंडीशनर नहीं चलाते थे, इसलिए कि बिल देने के उनके पास पैसे नहीं होते थे। और ये बात जब उन्होंने अपने कॉलम में लिखी तो फिर जाहिर है कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई, कॉलम तो उनका बड़ा पढ़ा जाता था। अगर मैं आपको ये कहूं कि तो आप शायद आपको यकीन ना आए और सुनने वालों को भी यकीन ना आए कि 300 रुपए उनको कॉलम के मिलते थे, जबकि उस जमाने में एक्सप्रेस अखबार फी कॉलम तकरीबन 5,000 से 8,000 रुपए ये दे रहा था। तो हमीद अख्तर साहब ने कहा कि भाई आपका मामला मैं करवा देता हूँ और आप वहां आ जाइए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और ये बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने कहा कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नवाए वक्त जो है वो चले जो भी पैसे देता है, 300 रुपए और 8,000 रुपए का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और जरूरतें मुंह फाड़े खड़ी थी, बीमारी थी और बहुत सारी जरूरतें थी। तो बात यह है कि वो खुददार आदमी थे गजब के, और मकाम का जहां तक ताल्लुक है सवाल है तो इसमें मैं ये अर्ज करूं कि अताउल्लाह कासमी साहब से कोई पूछ ले जाके कि किस तरह कासमी साहब ने वो सारा उनका बिल की अदायगी में वो सहूलतकार का किरदार अदा किया और पंजाब हुकूमत से बात की। तो और फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत इक्का दुक्का तकारीब हुई है या उनको याद किया गया उसमें भी कासमी साहब पेश पेश थे। ये तो मुर्दा परस्त हम कौम है, और मरने के बाद ए हमीद साहब तो ऐसे शख्स थे कि मैं क्या अर्ज करूं कि मरने के बाद भी उस तरह उनको याद नहीं किया जा रहा जिस तरह और लोगों को किया जाता है, और रिवाइवल हम देखते हैं। वो सारी जिंदगी उन्होंने लिखा। अच्छा, कुल वक्ती और जुज वक्ती का भी मैं आपसे अर्ज करूं कि हम कह सकते हैं बहरहाल वो स्टाफ आर्टिस्ट थे, और एक स्टाफ आर्टिस्ट जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको सहूलतें भी नहीं होती, और वो एक बड़ी अजीब गरीब सी कॉन्ट्रैक्ट पे और नौकरी कर रहा होता है। तो अखलाक अहमद दहलवी जो बहुत बड़ा नाम था वो भी स्टाफ आर्टिस्ट थे, ये भी स्टाफ आर्टिस्ट थे, नासिर काजमी भी, ये सब बड़े बड़े जितने नाम थे इनको रोजी कमाने के लिए और पेट भरने के लिए इस मामूली सी रेडियो की नौकरी करनी पड़ी, और सारी जिंदगी इन्होंने नौकरी की, लेकिन उस नौकरी से उनका घर चलना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो कलम के मजदूर थे, सारी जिंदगी उन्होंने लिखा, 500 के करीब उनके किताबों की तादाद बनती है जनाब, मैं आपको ये बताऊं ए हमीद साहब की, और उसमें बच्चों के भी नॉवेल शामिल हैं और अफसाने भी हैं और नॉवेल भी हैं और खाकों के मजमूए भी हैं, सभी कुछ मिला के अगर देखें तो तकरीबन ये तादाद 500 तक चली जाती है।
अच्छा राशिद साहब, हमारे इल्म में है आपने उनकी बहुत सी किताबों को और दो दो एक का जिक्र भी आपने किया, जैसे डरबे का जिक्र किया, अमृतसर की यादें का जिक्र किया, कुछ किताबें आपने उनकी स्कैन करके डाउनलोड की हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे पढ़ने वालों को, क्योंकि जाहिर है आपने बताया कि 500 किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो वो सारी किताबें तो जाहिर है कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन चंद किताबें, अगर आप, मैं आपसे कहूं कि 5 किताबें आप ए हमीद साहब की लिस्ट कीजिए कि जिससे उनका फ्लेवर, उनके उनका रंग हमें पता चलता है, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा डरबे का, उसके बाद अमृतसर की यादें, फिर उसके बाद एक बेहद जानदार किताब जिसका नाम है यादों के गुलाब, ये भी खाके और तस्करे हैं, पुरानी बातें। फिर चौथी किताब मैं कहूंगा लाहौर की यादें, और फिर उसके बाद बारिश, समावार और खुशबू जो उनके कॉलम का मजमू है 2008 में, जैसा मैंने अर्ज़ किया हुआ था, तो वो पढ़ लिया जाए या फिर उससे इंतजार कर लिया जाए उस वक्त का कि जब संगमिल पब्लिकेशन से ये सारा काम इनका अनकरीब शाया हो जाए, शाया हो जाएगा। ये 5 किताबें हैं, इनके साथ साथ मैं 2-3 नाम और लूंगा। तो इसमें चांद चेहरे जो इस वक्त मेरे सामने रखी है, गुलिस्तान अदब की सुनहरी यादें, इब्ने इंशा यादें बातें बहार खिजां, और अमेरिकानों जो उनका सफरनामा था अमेरिका का, जब वॉइस ऑफ अमेरिका में वो मुलाजमत के लिए गए थे, और फिर उसके बाद एक 4-5 साल पहले उनकी एक दो किताबें या के बाद दीगर आई थी, जिसमें देखो शहर लाहौर एक ये है, और है लाहौर की बातें कुछ नई कुछ पुरानी। ये 10 किताबों के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। इसमें इनको पढ़ने के बाद खास तौर पे याद, अमृतसर की यादें, डरबे और ये जो शुरू के मैंने नाम लिए, मैं समझता हूँ कि ए हमीद साहब का पूरा फन वो इनमें सामने आ जाएगा, कूजे में बंद हो जाएगा सब कुछ, कुछ मजीद जानने की हाजत नहीं रह जाएगी।
अच्छा राशिद, आप लाहौर गए थे उनसे मुलाकात के लिए, आपकी जाती मुलाकात उनसे हुई थी, मैं चाहता हूँ कि आप कोई खुशगवार बात उस मुलाकात के हवाले से हमें बताइए जो ए हमीद साहब ने आपसे की, ताकि इस खुशगवार नोट के साथ हम इस तस्करे को और इस गुफ्तगू को खत्म कर सकें।
एक मुलाकात जो है वो 1 घंटे की थी, और उसी उनके घर में थी, राहे चमन उन्होंने नाम भी उसका, मैंने पता भी जो घर का था, दरख्तों से घिरा हुआ घर, सामने कोई पार्क था, उसका एक कोना था, और जनाब हम जाके बैठे, उनसे खूब बातें की, किरदारों के बारे में कैसे लिखते थे, बहुत मजे मजे की बातें बताई। तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा जनाब शाहब नामा में कुदरतुल्ला शाहब साहब ने आपके बारे में आपका जिक्र किया, और वो जिक्र क्या था, उन्होंने कहा था कि जब वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे पंजाब में, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो पावर लूम्स का उस जमाने में एक वो चर्चा था, और लोग धड़धड़, वो जिसका हाथ लग रहा था वो लाइसेंस लेता था और वो कारोबार शुरू कर देता था, तो वो परमिट इन्होंने दिलवा दिए, ये आए मिलने शाहब साहब से और ए हमीद साहब, तो उन्होंने वो परमिट 3 महीने बाद उन्होंने लिखा है शाहब नामा में कि वो वापस आए, और वो वापस कर दिए उन्होंने, और कहा कि मैं जो है वो जायजा लेने के बाद नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये कारोबार मेरे बस का नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आज LPG का जो कोटा है ना, वो करोड़ों रुपए में फरोख्त होता है, उस जमाने में आप लगा लीजिए कि सारे उनके दलदर दूर हो जाते, अगर उसको ब्लैक मार्केट में वो बेच देते बड़ी आसानी से, और वो तो उनको उनके नाम पे था, उन्होंने गवारा नहीं किया। तब उन्होंने लिखा शाहब साहब ने कि साहेब तर रदीब का किरदार भी उसकी तहरीरों की तरह दिलनशीन था, तो ये मामूली बात नहीं है। तो मैंने जब उनको याद दिलाया तो हंसने लगे, तो वो कहने लगे कि यार वो इसी तरह से बात करते थे, वो कहने लगे यार मैं ये बात अपनी बीवी को अक्सर कहता हूँ, जब वो मुझे किसी बात पे कुछ बुरा भला कहती है या डांटती है या खफा होती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई देखिए आप ये ना कहिए, कुछ कितने बड़े आदमी ने हमारा जो तस्करा है वो इस अंदाज में किया है, तो मैं ये कोट करता हूँ, रेफर करता हूँ।